पृष्ठ संख्या 536, सूफी कवियों का भाषा पर प्रभाव। सर्वप्रथम सूफी कवियों ने भाषा को स्थिरता और एकरूपता प्रदान की। इस महत्वपूर्ण साहित्य सेवा के लिए हिंदी साहित्य उनका ऋणी है और उनकी सहज, सुंदर, सरस, सुमधुर, सुबोध भाषा उनकी कीर्ति को यावत चंद्र दिवाकरौ स्थिर रखेगी। हिंदी की चार प्रधान उपभाषाएं हैं, इनमें से एक पूर्वी हिंदी है। इसका विकास प्राचीन अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। इसकी दो प्रमुख बोलियां हैं, अवधी। इस भाषा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपने इवोल्यूशन ऑफ अवधी नामक ग्रंथ में लिखा है, और छत्तीसगढ़ी। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा पृष्ठ संख्या 537 प्रायः सर्वत्र अवधि दीख पड़ती है और उसमें प्रायः ठेठ रूप ही का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में काशी निवासी कबीर के प्रभाव से विशेषकर पूर्वी भाषा अवधि का ही उस निर्गुण पंथी संत कवियों की भाषा में प्राबल्य रहा। यद्यपि खड़ी बोली और पंजाबी भी अपना प्रभाव डाले बिना न रहीं, इन साधु संतों द्वारा प्रयुक्त भाषा को हम सधुक्कड़ी अवधि अथवा साहित्य में प्रयुक्त उसका असंस्कृत अपरिमार्जित रूप कह सकते हैं। आगे चलकर इसी अवधि को प्रेमाख्यानक मुसलमान कवियों ने अपनाया और उसको किंचित परिमार्जित रूप में प्रयुक्त करने का उद्योग किया। इसमें उनको बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। एक, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के मतानुसार सुबोधता, सरलता, रमणीयता, लालित्य एवं प्रवाह हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य की व्यंजना कला संबंधी सामान्य विशेषताएं हैं। भाषा भावों की व्यंजना में पूर्ण समर्थ है। दो, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के अनुसार प्रायः सभी सूफी काव्यों की भाषा अवधि है। यह अवधि संस्कृत के तत्सम शब्दों और कोमल कांत पदावलियों से युक्त नहीं है, वरन लोक भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं से मंडित है। तीन, कबीर दास के वचनानुसार संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। चार, सूफी कवियों ने कूप जल के स्थान पर बहता नीर ग्रहण किया है। इसका प्रवाह जनता की प्रिय नदी गंगा के जल प्रवाह के समान अनूठा है, जो मोहिनी डाल देता है। एक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा, प्रयाग, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 48-49। दो, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, इलाहाबाद, सन 1962 ईस्वी, पृष्ठ 368-370। तीन, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, पद्मावत ने लोक तत्व, इलाहाबाद, सन 1962, पृष्ठ 111-112। चार, संत वाणी संग्रह भाग एक, प्रयाग, सन 1915, पृष्ठ 63। पृष्ठ संख्या 538। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन के अनंतर हम कह सकते हैं कि इन जन कवियों ने तत्कालीन जनकंठ की भव्य भाषा को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने भाषा को सुश्रृंखल रूप देकर इसके द्वारा प्रेम मार्ग का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण किया है। इसी मनोहर एवं मधुर भाषा के माध्यम से सूफी कवियों ने प्रेम पथ में प्रेमी और प्रेयसी के तप, त्याग एवं सूफी साधना में सहन किए जाने वाली विघ्न बाधाओं का सच्चा और सुंदर वर्णन किया है। संक्षेपतः, सूफी कवियों का भाषा सौष्ठव और भाषा शैली मन को रमाने वाली है। भाषा में एक रूपता इतनी घर कर गई है कि सभी पात्र एक भाषा भाषी हैं। निस्संदेह भाषा की दृष्टि से भी सूफी कवियों का हिंदी काव्य में आदरणीय स्थान है। सूफियों द्वारा अवधि का प्रयोग क्यों? भारतवर्ष में रहने वाले सूफी फकीरों की यह विशेषता थी कि वे जिस भूखंड में गए वहाँ की बोली को उन्होंने सीखा और वहाँ के रहने वालों में अपने विचार उन्हीं की बोली में प्रचारित किए। मोहम्मद अब्दुल हक के शब्दों में, जितने औलियाए अल्लाह सरजमीने हिंद में आए या यहाँ पैदा हुए, वे बावजूद आलिमो फाजिल होने के खवास, खास लोगों को छोड़कर अवाम जनसाधारण से इन्हीं की बोली में बातचीत करते थे और तालीम शिक्षा व तलकीन दीक्षा फरमाते थे। मोहम्मद अब्दुल हक उर्दू की इब्तदाई नशवोनमा में सूफियाए किराम के काम अंजुमन ए तरक्की ए उर्दू सन 1939 ईस्वी पृष्ठ 104। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अनुसार मुसलमान भी यहाँ की जबान से मोहब्बत रखते थे। चुनांचे 16वीं सदी ईस्वी शेरशाही अहद में मलिक मोहम्मद जायसी एक शायर हुआ। उसने पद्मावत की दास्तान नज्म की। इससे अहदे मस्कूर उक्त समय की जबान ही नहीं मालूम होती बल्कि साबित प्रमाणित होता है कि मुसलमान इस मुल्क में रहकर यहाँ की जबान को किस प्यार से बोलने लगे थे। इसकी बहर छंद भी हिंदी रखी है और वरक के वरक उलटते चले जाओ फारसी अरबी का पृष्ठ संख्या 539 लफ्ज शब्द नहीं मिलता। एक, वे समझते थे कि स्थानीय भाषा में संदेश सुनाकर किसी स्थान की जनता पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। अपने अपने प्रदेश की भाषा को वे हिंदी या हिंदवी, हिंदव धन किया एक प्रत्यय हिंदवी शब्द का प्रयोग करते थे। डॉक्टर सदीकी के शब्दों में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की हर जबान हिंदवी या हिंदी थी। चुनांचे अपनी अरबी और फारसी से मुमताज करने के लिए उन्होंने अपने अपने इलाकों भूखंडों की बोली को हिंदवी या हिंदी के आम नाम से पुकारना शुरू किया। यही वजह है कि पंजाब, दिल्ली, दक्कन और गुजरात में इस अहद की बोली के जो कदीम प्राचीन नमूने मिलते हैं उन सबको हिंदी और हिंदवी कहा गया है। दो, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार 13वीं 14वीं शती में देसी भाषा को हिंदी या हिंदवी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो 1253-1315 ईस्वी का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तीन, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदुई शब्द का प्रयोग किया है। तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही जेही महमारग प्रेम कर सबे सराहताही। चार, अतः जनता में अपने संदेश प्रसारित करने के लिए सूफी कवि जिस क्षेत्र में रहे वे हिंदी या हिंदवी अर्थात वहाँ की भाषा में काव्य लिखते रहे। बंगाल में दौलत काजी आलाओल मोहम्मद खातिर साबिरित खां मोहम्मद कबीर सैयद हामजा आदि प्रसिद्ध हैं। दौलत काजी बंगला के प्रथम सूफी कवि हैं जिनकी रचना को बंगला का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कहा जा सकता है। पाँच, एक, मौलाना मोहम्मद मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात लाहौर मुबारक अली सन 1950 ईस्वी पृष्ठ 18। दो, ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन लाहौर जिल्द 29 अदद 2 मई 1952 डॉक्टर सदीकी का लेख कदीम गुजराती पृष्ठ 3। तीन, हिंदी साहित्य कोश बनारस संवत 2015 पृष्ठ 888। चार, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 301 डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित पद्मावत में यह दोहा नहीं दिया गया। पाँच, प्रोफेसर राम पूजन तिवारी हिंदी सूफी काव्य की भूमिका पटना सन 1960 ईस्वी पृष्ठ 76 पृष्ठ संख्या 540। उनका ग्रंथ रत्न सती मैना ओ लोर चंद्रानी नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कथा मौलाना दाऊद की चंद्रायन से मिलती जुलती है। बंगला के पुराने मुसलमान कवियों में आला ओल ने सबसे अधिक ग्रंथों की रचना की। दो, आलाओल के 6 सुप्रसिद्ध रचनाओं में पद्मावती उल्लेख्य है। कवि ने इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का अनुवाद बंगला में किया है। मोहम्मद खातिर ने कुतुबन की मृगावती के अनुसरण में काव्य रचना की है। साबिरित खां ने प्रख्यात विद्या सुंदर काव्य लिखा है। मोहम्मद कबीर ने मनोहर मालती की कहानी का आश्रय लेकर बंगला में काव्य को रचा है। मोहम्मद कबीर के अतिरिक्त सैयद हामजा ने भी मधुमालती की रचना की है। पंजाब में सूफी कवियों में पाक पटन निवासी शेख फरीद शकरगंज सन 1173-1266 ईस्वी। तीन, शाह हुसैन बुल्ले शाह सुल्तान बाहू अली हैदर करम अली करीम बख्श, ख्वाजा गुलाम फरीद आदि विख्यात हैं। अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाक पटन के शेख फरीद प्रथम पंजाबी सूफी कवि और ख्वाजा गुलाम फरीद सन 1841 लगभग 1900 ईस्वी 4 अंतिम उल्लेखनीय सूफी कवि हैं। श्री अब्दुल गफूर कुरैशी के मतानुसार प्रख्यात फारसी कवि ख्वाजा हाफिज की गजल इतनी प्रभावित नहीं कर सकती जितनी ख्वाजा फरीद की एक काफी। 5. हमारे विचार में कुरैशी साहब ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। 1. वही पृष्ठ 71, 2. वही पृष्ठ 71, 3. गुरशबद रत्नाकर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर सरदार काहन सिंह नाभा भाषा विभाग पटियाला 1960 ईस्वी पृष्ठ 607। 4. श्री अब्दुल गफूर कुरैशी पंजाबी जवान दा अदब ते तारीख लाहौर सन 1956 पृष्ठ 155 एवं 163। 5. वही पृष्ठ 156। शेख बुल्ले शाह असाधारण प्रतिभा संपन्न सूफी कवि थे और पंजाबी भाषा का संभवतः वैसा कोई पृष्ठ संख्या 541 बड़ा सूफी कवि नहीं हुआ। 1. करम अली ने अपने एक ख्याल में होली का वर्णन किया है और राधा कृष्ण की होली का उल्लेख करके अपने पीर को स्मरण किया है। कवि करम अली का सभी धर्मावलंबी आदर एवं मान करते थे। करीम बख्श का 12 माह 2 मोहम्मदी प्रसिद्ध है। सिंध में शाह अब्दुल लतीफ, सचल, रोहल आदि प्रख्यात हैं। सिंध के सूफी कवियों में लतीफ का स्थान सर्वोच्च है। कवि ने आयतो, मसनवी, गुलशन राज तथा अन्य ग्रंथों के कुछ कुछ अंशों का सिंधी में अनुवाद किया है। उनका सिंधी भाषा पर इतना अधिकार है कि वे अनुवाद बिल्कुल मौलिक रचना जैसे लगते हैं। सिंधी भाषा के दूसरे सुप्रसिद्ध सूफी कवि सचल अत्यधिक विद्वान और भावप्रवण कवियों में से थे। रोहल ने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदू धर्म और इस्लाम को निकट लाने की चेष्टा की। गुजरात में जिस जिस सूफी कवि ने गुजराती में लिखा उसका उल्लेख न तो ग्रियर्सन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण 3 में किया है न ही किसी हिंदी के विद्वान ने। ग्रियर्सन ने गुजराती साहित्य का प्रारंभ 14वीं शताब्दी ईस्वी के कविवर नरसिंह मेहता की चर्चा से किया है। उसने नरसिंह मेहता के अतिरिक्त कुछ अन्य हिंदू साहित्यकारों का वर्णन भी किया है। 1. प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, पटना सन 1960 ईस्वी पृष्ठ 94। 2. 12 मासा पंजाबी सूफी कवियों का प्रिय विषय रहा है। 12 महीनों में वियोगिनी साधक के कष्टों का वर्णन सूफी कवियों ने किया है। 12वें महीने के अंत में परम प्रियतम के साथ उसका मिलन संभव हो पाता है, अतः 12 मासा पंजाबी भाषा में नहीं लिखा जाता। 3. खंड 9 भाग 2 पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में गुजरात के मुसलमान सूफी कवि शेख खूब मोहम्मद के 2 काव्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं। प्रथम पृष्ठ संख्या 542 खूब तरंग नामक काव्य ग्रंथ में सूफी मत के गहन भावों को अभिव्यक्त किया गया है और द्वितीय काव्य ग्रंथ छंद छदान में पिंगल शास्त्र को सरल शैली में हृदयंगम कराया गया है। खूब तरंग का आकार 7x11 पृष्ठ संख्या 139 लिपि अरबी रचना तिथि सन 986 हिजरी 1 अर्थात सन 1578 ईस्वी है और किताबत लेखन तिथि सन 1113 2 हिजरी अर्थात 1701 ईस्वी है। प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हुई हैं। जिल्दे किताबे खूब तरंग तसनीफ़े हजरते हकायक व मारिफ आगाह वली अल्लाह हजरते खूब मोहम्मद गुजराती दर जबाने भाखा दर तसव्वुफ रास्त अस्त 3 अर्थात खूब तरंग को सूफी कवि हजरत खूब मोहम्मद गुजराती ने भाखा 4 में रचा है जिसका विषय तसव्वुफ है। 1. नुस्खे की तारीख स्थान पाए अदद हर मिसरे मान खूब मोहम्मद किए विचार 14 घाट ऊस बरस 1000 दूजा चांद सो था शबान दीस दो शंबिह किया बयान पृष्ठ 4 शबान 8वां अरबी मास 2 शंबिह सोमवार 2. तमाम शुद्ध नुस्खा ए खूब तरंग तसनीफे हकायक व मारिफ आगा हजरते खूब मोहम्मद पाजंद पांच दहुम शहरे रमजानुल मुबारक 46 जुलूसे मैमनत विलासने हिजरी यक हजारो यक सदो सीजदा बरुजे हुमायूं रूजे दो शुम्बिह पृष्ठ 139 अर्थात सूफी कवि हजरत खूब मोहम्मद द्वारा विरचित खूब तरंग नामक पुस्तक की हस्तलिखित प्रति का लेखन कार्य सोमवार 15 रमजान नवा अरबी मास सन 1113 हिजरी को संपन्न हुआ। 3 प्रति में इन पंक्तियों के लेख में और पुस्तक के लेख में अंतर है। 4 मुसलमानी परंपराओं से संबंधित कवि फारसी और अरबी ऐसी प्राचीन भाषाओं की तुलना में देसी भाषा के लिए हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं। भारतीय परंपरा से संबंधित कवि संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं की तुलना में देसी भाषा के लिए केवल भाषा या भाखा का ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, कबीर, हिंदी साहित्य कोश, बनारस, संवत 2015 विक्रम, पृष्ठ 888, पृष्ठ संख्या 543। आगे चलकर शेख खूब मोहम्मद ने स्वयं अपनी भाषा को गुजराती बोली कहा है। जीवन दिल अरब अजम की बात सुन बोले बोली गुजरात। 1 इस गुजराती बोली में अरबी और फारसी शब्दों का सम्मिश्रण है। जीवन मेरी बोली मन बात अरब अजम में एक संघात। 2 हाशिया में दूसरे मिसरे की व्याख्या इस प्रकार की गई है, यानी जबाने अरब व अजम यक जा करदा ई नुस्खा निवस्ता शुद्ध। 3 अर्थात अरबी और फारसी का साथ मिलाकर इस पुस्तक की रचना की गई। पृष्ठ 3 और 4 पर कवि ने अपने गुरु शेख कमाल मोहम्मद सिस्तानी का उल्लेख किया है और स्पष्ट रूपेण लिखा है कि जो दिल की बात थी और जो मुर्शिद गुरु से सुना था केवल उसी को खूब तरंग में अदा कर दिया है। ओन थी मैं सुनिया दिन रात ओस मन याद रही कुछ बात वह जीवन मुझको आई तरंग जमा किए ले तिस तिस ढंग। 4 इसी कारण पुस्तक का नाम खूब तरंग रखा गया है। इस पुस्तक पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है परंतु हम यहाँ अधिक नहीं लिख सकते क्योंकि वह शोध प्रबंध की परिधि से बाहर हो जाएगा। शेख खूब मोहम्मद रचित दूसरे ग्रंथ छंद छदान की प्रति अनेक स्थानों पर कृमियों द्वारा खाई हुई है और बहुत बुरी हालत में है। इसी प्रकार गुजराती सूफी कवि शाह अली मोहम्मद जीव गाम देहनी की जवाहिरे असरारे अल्लाह नामक काव्य उल्लेख्य है। 1 शेख खूब मोहम्मद खूब तरंग पृष्ठ 3, 2 वही पृष्ठ 4, 3 वही पृष्ठ 4, 4 शेख खूब मोहम्मद खूब तरंग पृष्ठ 4। ग्रंथ का संपादक शेख हबीबुल्लाह कुरैशी अल अहमदी गुजराती ने लिखा है, पृष्ठ संख्या 544। दर बयाने तौहीद व असरार व अल्फाज गोजरी व तरीके नज्म फरमुदा दरी मुख्तसर आवर्दा व जमा करदा। 1 अर्थात प्रभु की स्तुति में गुजराती भाषा में लिखे हुए काव्य को मैंने संक्षिप्त रूप में संग्रहित किया। जवाहिरे असरारे अल्लाह में सी हर्फी मौजूद है। 2 सी हर्फी में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर पदों की रचना होती है। सूफी कवि जमीन ने भी गुजराती में आलमगीर औरंगजेब के समय यूसुफ जुलेखा सन 1109 हिजरी में रची। कवि ने लिखा है, लिखी गोजरी मने यूसुफ जुलेखा। 3 हमारे सूफी कवि अवधि क्षेत्र 4 के रहने वाले थे। वे वहां रहने के कारण जनसाधारण में बोली जाने वाली अवधि से पूर्ण परिचित थे। उन्होंने अपने काव्य वहां की जनता में अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखे, अतएव इनके काव्य की भाषा जनसाधारण में बोली जाने वाली अवधि है, जिसमें न तो संस्कृत की तत्समता के दर्शन होते हैं और न विदेशी शब्दों की ओर ही आकर्षण प्रतीत होता है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के शब्दों में लोक प्रचलित कहानियां इन्होंने ली। इनका लक्ष्य जनता के हृदय को छूना था। 1 हाफिज महमूद शिरानी पंजाब में उर्दू अंजुमने तरक्की ए उर्दू लाहौर पृष्ठ 22, 2 वही पृष्ठ 55, 3 वही पृष्ठ 22, 4. हरदोई जिले को छोड़कर शेष अवध की बोली अवधि है। यह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी में बोली जाती है, किंतु इन जिलों के अतिरिक्त दक्षिण में गंगा पार इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर के कुछ भागों में भी बोली जाती है। मिश्रित अवधि का विस्तार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक है। डॉक्टर शिव सहाय पाठक, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य कानपुर, सन 1964 ईस्वी, पृष्ठ 374। उनके सामने न तो पंडित वर्ग था, पृष्ठ संख्या 545, और न मुल्ला वर्ग। वे अपने उपदेशों को साधारण जनता के बीच फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण उनकी भाषा जनसाधारण की अवधि भाषा थी। इनका यही महत्व है। 1. इस संबंध में आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ये विचार महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सूफी मुसलमान कवियों ने प्रेम गाथाओं की रचना जन भाषा में करके जीवन के कई नैसर्गिक तथ्यों को एक साथ प्रमाणित कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि कोई अपनी वाणी का प्रसार करना चाहता है तो उसे जन भाषा का ग्रहण अनिवार्य रूप से करना ही होगा। 2. अतः सूफी कवियों ने बोलचाल की अवधि को ग्रहण किया। यह अवधि जन भाषा का जीवंत और ज्वलंत रूप प्रस्तुत करती है। यह भाषा अत्यंत श्रुति मधुर, सरल किंतु व्यंजनापूर्ण, समर्थ तथा माधुर्य पूरित है। सूफी कवियों की भाषा का रूप। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के सर्वप्रथम ज्ञात कवि मौलाना दाऊद हैं। वे डलमऊ के रहने वाले थे। डलमऊ रायबरेली जिले में स्थित है, जहाँ अवधि बोली जाती है। अतः जनता में संदेश प्रसारित करने के लिए जन कवि दाऊद ने जन भाषा अवधि का ही चयन सर्वोत्तम समझा। भाषा सीधी सादी और तद्भव बहुल अवधि है, जिसमें मुहावरों का प्रयोग भी कम नहीं है। 3. संभवतः मौलाना दाऊद से पूर्व अवधि की काव्य परंपरा विकसित हो चुकी थी, क्योंकि 11वीं शताब्दी की रचना कवि रोडाकृत राउल बेल मिल गई है। 1. डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य इलाहाबाद, सन 1962 ईस्वी, पृष्ठ 368। 2. चित्ररेखा वाराणसी, सन 1959, एक बोल, पृष्ठ 6। 3. हिंदी अनुशीलन धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक, वर्ष 13, अंक 1, 2, सन 1960 ईस्वी, पृष्ठ 23। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का कथन है कि इसकी भाषा पुरानी, पृष्ठ संख्या 546, दक्षिण कोसली है। 1. दक्षिण कोसली अवधि का एक पूर्व रूप है, अतएव 11वीं शताब्दी में अवधि में काव्य रचना हो रही थी। अतः मुल्ला दाऊद की प्रौढ़ कृति चंदायन कदाचित अवधि की पहली कृति नहीं होगी, इसके पूर्व भी कोसली परंपरा रही होगी। संभवतः 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच का साहित्य भविष्य में प्राप्त हो सके, जिसकी अब अधिक संभावना राउल वेल की प्राप्ति के पश्चात हो गई है। 2. जायसी कृत प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की अग्रसर कुतुबन विरचित मृगावती शक 1885 में पहली बार प्रकाश में आई। 3. मृगावती की भाषा भी ठेठ अवधि है। एक ओर तो कवि ने अरबी फारसी के शब्दों की ठूस ठास नहीं की है और दूसरी ओर संस्कृत के क्लिष्ट तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया है। उनके काव्य की अवधि परिनिश्चित साहित्यिक भाषा नहीं है, वह बोलचाल की और सीधी सादी है। शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति आदि सभी दृष्टियों से मृगावती की भाषा लोक रस से संपन्न है। मृगावती की भाषा के संबंध में कवि कुतुबन ने स्वयं भी लिखा है कि उसने देशज या ग्रामीण शब्दों का व्यवहार किया है। मास्तर अशिर बहुत आए, अदेसी चुनी चुनी कछुलाए। 4. इस विषय में डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र का कथन उल्लेखनीय है। 1. हिंदी साहित्य संपादक धीरेन्द्र वर्मा तथा ब्रजेश्वर वर्मा, प्रयाग, संवत 2015 विक्रम, खंड 2, पृष्ठ 261। 2. डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे, मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, इलाहाबाद, पृष्ठ 260। 3. इसके संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र हैं और यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित है। 4. कुतुबन कृत मेगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 203। कुतुबन ने मृगावती में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जिसका पृष्ठ संख्या 547 स्वरूप अन्य सूफी रचनाओं की भाषा के ही समान लौकिक या बोलचाल की भाषा का सा है। उसमें देशज व ग्रामीण शब्दों की भरमार है और उन शब्दों में वह अनगढ़पन है जो उन्हें प्राकृत, अपभ्रंश तथा डिंगल आदि से प्राप्त हुआ। इन्हीं देशी शब्दों को चुन चुन कर रखने की बात कुतुबन ने कही है। एक, सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ मलिक मोहम्मद जायसी थे, जो कहीं बाहर से जायस में आए थे और इसी धर्म स्थान को अपना निवास स्थान बना लिया था। दो, अतः अवध प्रांतांतर्गत जायस नगर में रहने के कारण उन्होंने जन साधारण की अवधि को अपनाया है। वह साहित्यिक भाषा की भांति व्याकरणिक एवं शास्त्रीय नियमों से बंधी संधि नहीं है। उसका माधुर्य अपना माधुर्य है। बोलचाल की भाषा का इतना निखरा हुआ रूप अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा तीन का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। वह संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर अवलंबित नहीं, उसमें अवधि अपने निज की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। अवधि की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। चार, एक, कुतुबन कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग, शक 1885, भूमिका, पृष्ठ 34-35। दो, क, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 270। ख, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान जायस था, अभी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, परंतु निवास स्थान अवश्य था। सम्मेलन पत्रिका प्रयाग, भाग 50, संख्या 1, पौष फाल्गुन, शक 1885, श्री जहूर जायसी का लेख क्या कहरानामा और मसलेनामा जायसी कृत है, पृष्ठ 142। तीन, भाषा शब्द से उनका तात्पर्य लोक भाषा से है। चार, जायसी ग्रंथावली प्रस्तावना, पृष्ठ 205-206। संक्षेपतः जायसी, पृष्ठ संख्या 548, की भाषा सरल, सजीव, सुमधुर, स्वच्छ, सहज, साधारण, शुद्ध और प्रवाहमयी है। उसमें सबलता, व्यंजकता और सरसता है। जायसी ने मूलतः अवधि के पूर्वी रूप को ही अपनाया है, परंतु कहीं कहीं पश्चिमी अवधि के रूप भी उनकी रचनाओं में मिलते हैं। वे तू या तय के स्थान पर प्रायः तुई का प्रयोग करते हैं। यह कन्नौजी और पश्चिमी अवधि का रूप है। इसी प्रकार उनकी साधारण क्रियाएं पश्चिमी अवधि से प्रभावित हैं। जायसी के नाम को उनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत ने चमकाया है। वह सूफी साहित्य की अक्षय निधि है। उसकी हिंदी जगत ही में नहीं वरन समस्त भारतीय साहित्य में वही प्रतिष्ठा है जो फारसी साहित्य में मौलाना रूम की मसनवी की। पद्मावतकार की सफलता के जहाँ अनेक कारण हैं, वहाँ इसका सबसे बड़ा रहस्य है उसकी भाषा का सारल्य एवं लोकाकर्षक रूप। डॉक्टर शिव सहाय पाठक के कथनानुसार जायसी हिंदी के सूफी कवियों के शिरोमणि हैं। वे अवधि भाषा के महाकवि हैं। उनके पद्मावत में सर्वत्र अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में तत्कालीन अवधि का रूप सुरक्षित है। इसी कारण डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक ने पद्मावत की अवधि को प्रामाणिक अवधि भाषा कहना युक्ति संगत माना है। दो, कुछ पंडितों को पद्मावत की भाषा में ग्रामीणता का दोष दृष्टिगोचर हुआ है। जैसे पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने लिखा है कि ग्रामीणता के दोष से तो इनका ग्रंथ भरा पड़ा है। इन्होंने इतने ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है जो किसी प्रकार बोध सुलभ नहीं। तीन, परंतु लोक भाषा की दृष्टि से यही तो उसका गुण है। एक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सत्य जीवन वर्मा संक्षिप्त पद्मावत। दो, डॉक्टर शिव सहाय पाठक मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य कानपुर, सन 1964 ईस्वी, पृष्ठ 369। तीन, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद हिंदी भाषा और साहित्य का विकास लहेरिया सराय 1997 पृष्ठ 231। लोक भाषा के लिए पृष्ठ संख्या 549 दैनिक जीवन के शब्दों को आत्मसात करना स्वाभाविक है। इसी प्रकार कई विद्वानों ने जायसी की भाषा में न्यून पदत्व दोष भी बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैसे कि वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है, उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है। एक, उनकी भाषा का अध्ययन साहित्यिक भाषा की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। वस्तुतः जायसी भारत की ग्राम्य जनता के कवि हैं। ऐसे कवि प्रायः विभक्तियों, संबंधवाचक सर्वनामों और अव्ययों का लोप लोक भाषा की प्रकृति के अनुरूप कर जाते हैं। वस्तुतः किसी भी ग्रंथ की भाषा उसके परिनिष्ठित रूप के कारण श्रेष्ठ नहीं होती। इसके लिए दो मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं। एक तो वह लेखक के भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति में समर्थ है अथवा नहीं, दूसरे वह जिस देश काल में जिस समाज के लिए लिखी जा रही है उसके अनुरूप है या नहीं। इन दोनों कसौटियों पर कसने के पश्चात हम कह सकते हैं कि जायसी की भाषा अत्यंत प्रौढ़ है, अवधि मुहावरों की रानी है। दो, जायसी ने इनका सफल प्रयोग किया है जिससे उनकी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बलवती हो गई है। उन्होंने मुहावरों के अतिरिक्त कहावतों का प्रयोग भी बड़े कौशल से किया है जिसके परिणाम स्वरूप भाषा में बड़ी सजीवता आ गई है। जायसी ने गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए प्रतीकों का आश्रय भी लिया है। सचमुच मैथिली के लिए जो स्थान विद्यापति का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वही महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। तीन, एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली प्रस्तावना पृष्ठ 200। दो, डॉक्टर जयदेव सूफी महाकवि जायसी अलीगढ़ सन 1957 ईस्वी पृष्ठ 146। तीन, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत प्राक कथन चिरगांव संवत 2012 विक्रम पृष्ठ 28। मंजन कृत मधुमालती की भाषा अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भांति पृष्ठ संख्या 250 बोल चाल की अवधि है। वह सरल और बोधगम्य है। साधक प्रभु दर्शन से अवाक हो जाता है। वर्णन करने की चेष्टा करने पर भी वह वाणी को अपर्याप्त और असमर्थ पाता है। वर्णन करने की इस असमर्थता को कबीर ने इस प्रकार प्रकट किया है। अकथ कहानी प्रेम की किछु कही न जाए, गूंगे केरी सर करा खावे और मुस्काए। एक, मधुमालती में प्रेमा ऐसी भाव को कितने सीधे सादे शब्दों में व्यक्त करती है। दुई जीव बिच जो निर्बही बेलसी स्नेही कंत, सो कैसे हु नहीं आवे सखी ऐ जिमी कहंत। दो, भाषा में सर्वत्र प्रसाद गुण की अधिकता है। प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण भी विद्यमान है। भाषा भावों की व्यंजना में पूर्ण समर्थ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नागमती के 12 मासे का जो विस्तार और व्यापक प्रभाव है वह मधुमालती के 12 मासे में दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर भी दुखानुभूति की अभिव्यक्ति में भाषा समर्थ है। एक स्थल पर मधुमालती अत्यधिक मर्म स्पर्शी शब्दों में कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि मैं सतत नीर बहाती रही परंतु नेत्रों में बसा हुआ मेरा प्रियतम वहां से धोया नहीं गया। वह आंखों में गड़ा हुआ है और उसका रूप पूर्ववत स्थित है। अचिजु एह हाँ संतत रोई, पै न गए हु तुम चखु सेउ धोई। तीन, एक, कबीर वचनावली संपादक श्री तेज नारायण टंडन तथा श्री योगेंद्र नाथ शर्मा मधुप लखनऊ सन 1952 ईस्वी पृष्ठ 65। दो, मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 437। तीन, मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 363। मंझन की भाषा में नित्य जीवन में प्रयुक्त मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक मिलता है जिससे भाषा में पृष्ठ संख्या 551 सजीवता का समावेश हो गया है और साथ ही भाव भी सुगमता से स्पष्ट हो गए हैं। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियां देखिए जिसमें कहावतों का स्वाभाविक प्रयोग परिलक्षित होता है। एक, दसहों दिशा करी निर्मल धरे मुख उजियार, पैठी पाप कै ओबरी बरबस होई कोकार। एक, दो, जग उपखान जो कहियत आहा धन खोए बौराई जुलाहा। दो, तीन, गए साप का घुसनी ठठावसी जानी बूझी कत मोही बौरावसी। तीन, चार, उठही महंत पात आगौ मैं दू जग तोही आस जानी बूझी बरबस तुई बांधसी जाल के मोंट बतास। चार, अतः शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति आदि सभी दृष्टियों से मधुमालती की भाषा लोक रस से संपन्न है। निस्संदेह या स्वाभाविक बोलचाल के यथातथ्य शब्दों से पूर्ण है। उस्मान गाजीपुर नगर के निवासी थे 5, इसलिए उन्होंने वहीं की अवधि का प्रयोग किया है। यह ठेठ अवधि है जिस पर कुछ भोजपुरी का प्रभाव लक्षित होता है। 6.1 मंजनकृत मधुमालती, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 105। 2, वही पृष्ठ 126। 3, वही पृष्ठ 139। 4, वही पृष्ठ 139। 5, गाजीपुर का सुंदर चित्रण करने के उपरांत कवि उस्मान लिखते हैं, कवि उस्मान बसै तही गांव, शेख हुसैन तनय जगनाव। चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी, सन 1912, पृष्ठ 12। 6, डॉक्टर शिव सहाय पाठक, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य कानपुर, सन 1964 ईस्वी, पृष्ठ 369। उन्होंने कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का व्यवहार पृष्ठ संख्या 552 भी अपने ग्रंथ रत्न चित्रावली में किया है। यत्र तत्र अरबी और फारसी के शब्द भी मिलते हैं। कवि ने कहावतों एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग किया है। डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है, कहावतों के प्रयोग से उस्मान की भाषा अधिक व्यावहारिक हो गई है और साथ ही भावों की सफल व्यंजना हुई है। प्रयुक्त कहावतों में से कुछ ये हैं, धोवह बेगी आही जो लीना, कान टूक का करिए सोना, बिन रस अवनी जन्म जे पावा, सुने घर जस पाहुन आवा। 1, उस्मान की भाषा भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ है। चित्रावली के विरह वर्णन में कहीं कहीं कबीर और जायसी की स्पष्ट छाप है। निम्नलिखित दोहा में कबीर कहते हैं कि हृदय के भीतर विरह की अग्नि जल रही है, परंतु धुआं प्रकट नहीं होता है। इसको तो वही जान सकता है जिसे वह आग लगी हो या जिसने लगाई हो। हृदय भीतर दब बले, धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखें कि जिन लाई सोए। 2, इसी भाव को उस्मान ने मर्मपूर्ण शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, विरह अगिन उर मह बरे, एही तन जाने सोई, सुलगे काठ बिलूत ज्यों, धुआं न प्रगट होई। 3, संक्षेपतः जिस भाषा का प्रयोग कवि उस्मान ने किया है उस पर उन्हें पूर्ण अधिकार है। 1, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ, संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 371। 2, सटीक कबीर वचनावली, संपादक श्री तेज नारायण टंडन तथा श्री योगेंद्रनाथ शर्मा मधुप, लखनऊ, सन 1952 ईस्वी, पृष्ठ 14। 3, चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी, सन 1912 ईस्वी, चित्रावली विरह खंड, छंद 1, पृष्ठ 121। यद्यपि जायसी और उस्मान से पूर्व दाऊद कुतुबन एवं पृष्ठ संख्या 553 मंझन अवधि में रचनाएं कर चुके थे, किंतु अवधि भाषा जिस सौष्ठव के साथ जायसी और उस्मान के ग्रंथों में ढली है, वैसी उनके पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं में नहीं ढली। परवर्ती कवियों की भाषा का भी वैसा रूप नहीं। इस संबंध में श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी का मत उल्लेख्य है। इस कथा चित्रावली की कविता और भाषा आदि के संबंध में हमें कोई नई बात नहीं कहनी है। भाषा, व्याकरण, प्रबंध शैली, खंड विभाग आदि सब ढंग जायसी का ही है। केवल अंतर यही है कि इनकी भाषा विशेष परिमार्जित और प्रौढ़ है। यह तुलसी के समसामयिक थे और संस्कृत का ज्ञान यदि इन्हें होता तो इनकी भाषा प्रौढ़ता में उनके आसपास पहुंचती। 1, जायसी की भांति उस्मान ने भी पारिभाषिक शब्दों, प्रतीकों आदि के माध्यम से गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है। उनकी सारी कथा भी अन्योक्ति के रूप में समझी जा सकती है। निस्संदेह जायसी के भाव पक्ष तथा कला पक्ष का प्रभाव उस्मान पर पड़ा है। जायसी के रम्य रंगों को अपना कर उस्मान ने खूब रंग जमाया है। यदि जायसी को सूफी काव्य का सुर कहा जाए तो उस्मान को निस्संकोच शशि कहा जा सकता है। शेख नबीकृत ज्ञानदीप की भाषा जनसाधारण की तद्भव बहुल अवधि है। उन्होंने कथा को सीधी सादी भाषा में लिखा है, अतः प्रसाद गुण का बाहुल्य है। जिस बात को कहना चाहते हैं सरल स्वाभाविक ढंग से कह देते हैं। निम्नांकित पंक्तियों में अपने समकालीन सूरदास एवं तुलसीदास जैसे भक्त कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आप को अधम, अजान, पापी आदि कहा है, परंतु कहने का ढंग कितना सरल है। ह अजान मूरष दुष्व्यापी, अधम अधीन ही जड़ पापी, अविधि करऊं विधि पर नहीं जाऊं, पातश प्रीति सुरीति नसाऊं, तिस्ना लोभ क्रोध जिम कीन है, मोर मोर लाए लौलीन है, काम केली करुणा चित बाढ़ी, हंसी नसी रचना रस काढ़ी। एक हिंदी प्रेम गाथा काव्य संग्रह, संपादक श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी, इलाहाबाद, सन 1953 ईस्वी, भूमिका पृष्ठ 118, पृष्ठ संख्या 554। कूट कपट छल छंद अनेकु, बात विधान विषय विष केतु, मैन सैन मानिनी मन लाए, मुरै न मन अभिमान उठाए, सब एगुन है मोहि पह, एक गुण गंभीर, लै लै नाम रावरो, पोषऊं अधम शरीर। एक स्पष्ट है कि कवि ने संस्कृत के शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है। उन्होंने अन्य सूफी कवियों की भांति लोकोक्ति और मुहावरों का भी व्यवहार किया है। संक्षेप में शेख नबी की भाषा सहज, सरल और सुमधुर है। कवि काशिम शाह विरचित हंस जवाहिर भी पद्मावत की शैली पर अवधी भाषा में रचा गया है, परंतु इसमें अवधी के ठेठपन पर कहीं कहीं ब्रज और खड़ी बोली का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। काशिम शाह लखनऊ जिले के अंतर्गत दरियाबाद नामक नगर के निवासी थे। दो अतः उनकी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ साथ स्थानीय शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उनकी भाषा में कहीं कहीं संस्कृत, फारसी, तीन एवं अरबी के शब्द भी मिलते हैं। लोकोक्तियां और मुहावरों का भी व्यवहार हुआ है। उनकी भाषा भावों की व्यंजना एवं अपनी सामाजिक अभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ है। एक ज्ञानदीप, संपादक श्री उदय शंकर शास्त्री, आगरा, छंद 5। दो है लखनऊ अवध मंझियारा, दरियाबाद नगर उजियारा, हंस जवाहिर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1937 ईस्वी, पृष्ठ 7। तीन डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है, हसीन, अता, आतेश, फिसाद आदि फारसी के शब्द उन कासिम शाह के ज्ञान का परिचय देते हैं। जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ, संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 444। हसीन और आतिश फारसी के शब्द हैं, परंतु अता अरबी का शब्द है। फिसाद न फारसी का शब्द है और न ही अरबी का। फसाद अरबी भाषा का शब्द है। पृष्ठ संख्या 555। भिन्न भिन्न ऋतुओं की नाना वस्तुओं और व्यापारों को बिरही लोग किस प्रकार सादृश्य भावना द्वारा अपनी दशा की व्यंजना का सुलभ साधन बनाया करते हैं, जायसी की भाषा में देखिए। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी, पुरबा लाग भूमि जलपूरी, आक जवास बही तस झूरी। एक सखिन रचा पियुसंग हिंडोला, हरि हरि भूमि कुसुम्भी चोला, हिय हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाए देई झक झोरा। दो कवि कासिम शाह ने भी ऋतु सुलभ वस्तुओं और व्यापारों के साथ विरहणी के तन और मन की दशा का जायसी सा सादृश्य वर्णन किया है। भाषा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति में समर्थ है। नैन चुवै जस सावन ओरी, पियो बिन नाव को खेवे मोरी, सखी कंत संग करे किलोला, राधा पहिरी सुझुले हिंडोला, मोर सिंगार सो लैगा नाहा, गही को बाह पड़ेऊ औगाहा, पवन झुलावे मन हिमम, विरह झकोरे देय, गगन चढ़े उतरे अवनी, पियो बिन थाम को लेय। तीन इस सरल और दैनिक व्यवहार में आने वाली अवधि में कवि ने सामाजिक संस्कारों, राजनीति की चालों आदि का सफल चित्रण भी किया है। यथा निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट होता है कि कवि के समय स्त्रियों का सम्मान समाज में नहीं था। तिरिया चरित न कीन बिचारा, तिरिया मते बूढ़ संसारा, तिरिया जल मह आग लगावे, तिरिया सूखे नाव चलावे, तिरिया छार पुरुष मुख मेले, तिरिया छल नाटक खेले। चार एक जायसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 153। दो जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 152। तीन हंस जवाहिर नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1937 ईस्वी पृष्ठ 131। चार हंस जवाहिर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 165। पृष्ठ संख्या 556। इसी प्रकार कासिम शाह ने सहज सरल बोल चाल वाली अवधि में अर्थपूर्ण और समर्थ व्यंजनाएं की हैं और आध्यात्मिक संकेत भी किए हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि विरह पक्ष में रहस्यवाद का परिचय भी देता है। सारी सृष्टि उस प्रिय ईश्वर के पास पहुंचने के लिए व्याकुल है। धन वियोग सोग जग बोवा, धरती स्वर्ग जरा दुख रोवा, खुला जो देख समंद पहारा, रोवन लाग जगत संसारा, ठाउ ही ठाउ भूमि जो रोई, सोत सोत निकसी जल सोई, रोवा गिरी झरना भय आंसू, रोवे बन पक्ष बन बासु, अहि रोवत गए बैठी पतारा, टपके आंस कूप जलधारा, रोवे वृक्ष झरे पुनिपाती, रोवे नखत तराई राती, रोवत चंद भयो ही अकारा, रोवे मच्छ समंद भयो खारा, मेघ सो रोवे ताहि दुख, भूमि चुवावे आस, जग जाने बरसा भई, लागव भादव मास। एक नूर मोहम्मद सर्वप्रथम फारसी में कविता करते थे। उनका उपनाम कामयाब था। उस समय वे फारसी भाषा के माधुर्य के बड़े प्रशंसक थे। तदनंतर उन्होंने इंद्रावती की रचना की। इंद्रावती की सफलता ने उन्हें नल दमन और अनुराग बांसुरी की रचना करने को प्रेरित किया। दो इंद्रावती का प्रथम भाग काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हो चुका है, किंतु द्वितीय भाग अभी अप्रकाशित है। नल दमन की कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई। तीन अनुराग बांसुरी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हो चुकी है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ख्याति प्राप्त हैं। इंद्रावती की अपेक्षा अनुराग बांसुरी प्रौढ़ रचना है। एक हंस जवाहिर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 204। दो कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ी पारसी कंद नवातें, अरुझाना हिंदी रस बातें, आगे हिंदी समुद्र तिराना, भाखा इंद्रावती जो जाना, फेर कहा नल दमन कहानी, कौन गनावे दूसरी बानी। अनुराग बांसुरी प्रयाग संवत 2007 ईस्वी पृष्ठ 85। तीन अनुराग बांसुरी संवत 2007 ईस्वी पृष्ठ 85 टिप्पणी 4 पृष्ठ संख्या 557। इंद्रावती की भाषा अवधि है। इसमें भोजपुरी और ब्रज भाषा दोनों के प्रयोग स्पष्ट रूप से मिलते हैं। एक इंद्रावती भाषा में कवि की पहली कृति है जिसे उसने युवावस्था में रचा, इसलिए भाषा की दृष्टि से भी उसमें अनुराग बांसुरी की सी प्रौढ़ता नहीं। उसमें ठेठ और ग्रामीण प्रयोग बहुत आए हैं। कवि ने कहा भी तो है कि पोथी कहानी मेरा काम नहीं, मैंने तो खेल खेल में यह कथा लिख डाली है। दो इंद्रावती की भाषा बोधगम्य लालित्यपूर्ण एवं सजीव है। इसमें प्रवाह सर्वत्र मिलता है। इस काव्य का निष्प्रयास प्रवाह बड़ा ही वेगपूर्ण है। तीन लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग पग पग पर हुआ है। भाषा की मुहावरेदानी स्पष्टोक्ति तथा शब्द संगठन इनकी रचना को मधुर और सरल बनाने में सहायक हुए हैं। चार लोकोक्तियों के नमूने देखिए। क रह न एक अंत कह नारंग दाड़िम दाख, देवस चार की चांदनी फिर अंधियारी पाख। पांच एक डॉक्टर शिव सहाय पाठक मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य कानपुर सन 1964 ईस्वी पृष्ठ 369। दो हौ हीना विद्या बुद्धि सेती, गर्व गुमान करौ कही नेती, हौ मैं लरिकाई को चेला, कहो न पोथी खेलौ खेला, गुरुजन सो यह बिनती मोरी, कोप न मानही भौ हसिकोरी, दोस बहुत खेलत मह होई, दाया करेहु न कोपेहु कोई, दोस करे जो छोटा आही, मया करे गुरुजन कह चाही, मोही विवेक कछु नाही, नहीं विद्या बल आही, खेलत हौ यह खेल एक, दिष्टा देई निबाही। इंद्रावती काशी नागरी प्रचारणी सभा पृष्ठ 4। तीन श्री राम बहोरी शुक्ल और डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जालंधर, सन 1959 ईस्वी, पृष्ठ 282। 4. श्री राम बहोरी शुक्ल और डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जालंधर, सन 1959 ईस्वी, पृष्ठ 282। 5. इंद्रावती काशी नागरी प्रचारणी सभा, पृष्ठ 38, पृष्ठ संख्या 558। ख. जाके गोड़ न फटी बेवाई, सोका जाने पीर पराई। 1. सूफी कवियों के कई वर्णन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ जायसी और नूर मोहम्मद दोनों के गढ़ वर्णनों में से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं, जिनसे एक तो भाषा की तुलना हो जाएगी और दूसरा यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेम मार्गी कवियों पर हठ योग का भी प्रभाव है। जायसी: नव खंड नव पौरी, औतः वज्र केवार, चारि बसेरे सौ चढ़े, सत सौ उतरे पार। नव पौरी पर दसम द्वारा, तेहि पर बाज राज घरियारा, घरी सो बैठ घने घरियारी, पहर पहर सो आप निबारी, जब ही घरी पूजी तेई मारा, घरी घरी घरियार पुकारा। 2. नूर मोहम्मद: राजे गढ़ नौ खंड बनावा, ऊंच गगन लगता ही उठावा, पहिल खंड जगमग मनियारा, निस्मो दीख चंद उजियारा, चौथे खंड दीप है मानु, ज्ञान मंद किमि कहो बखानु, मंदिर एक अहै तही ठाऊ, तीर्थ मंदिर मंदिर नाऊ, तासो लोग बहुत फल पावें, सत्तर सहस नए नित आवें, मठ के ऊपर ठीक ही घड़ियाली घड़ियाल, निस दिन बैठे साधे घड़ी मुहूर्त काल। 3. जायसी के उद्धरण में दशन द्वार और अनहद नाथ के साथ सूफियों के माने हुए चार मकामों का वर्णन आ गया है। नूर मोहम्मद के नौ खंडों के ऊपर गढ़ का वर्णन है, वहाँ पर अनहद शब्द होता है। भाषा की दृष्टि से जायसी नूर मोहम्मद को पीछे छोड़ गए हैं। 1. वही पृष्ठ 79। 2. जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 16। 3. इंद्रावती पहला भाग काशी नागरी प्रचारणी सभा पृष्ठ 15। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के मतानुसार प्रौढ़ता की दृष्टि से जायसी की कृति अत्यंत प्रौढ़ लेखनी से लिखी पृष्ठ संख्या 559 गई है और इंद्रावती कमजोर है। पद्मावत के सभी वर्णन सजीव एवं विशद हैं। इंद्रावती में तो जैसे परंपराओं का पालन मात्र सा किया है, वहाँ पर न तो वर्णन में विस्तार ही दिया गया है और न विशदता ही। 1. परंतु इंद्रावती की अपेक्षा अनुराग बांसुरी की भाषा अधिक प्रौढ़ है। वह मूलतः अवधि ही है जिसमें ब्रज, संस्कृत भाषाओं और खड़ी बोली के शब्दों का भी पुट है। श्री चंद्रबली पांडे का कथन है कि नूर मोहम्मद ने भाषा की शुद्धता पर तनिक भी ध्यान न दिया और अपनी रचना अनुराग बांसुरी में ब्रजी, खड़ी और अवधि का घपला कर दिया। फिर भी उनकी रचना का ढांचा अवधि ही है। ब्रज और नागरी भी अब नूरानियों के मुंह में जाकर उर्दू की जबान बन चुकी थी। निदान उनका भी समावेश नूर मोहम्मद की अपनी भाषा में हो गया और अनुराग बांसुरी सचमुच भाषा विचार युग की खिचड़ी बन गई। नूर मोहम्मद का शिया हृदय सदा संस्कृत के स्वागत में तत्पर रहा और अपने हिंदी रचनाओं द्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि इस्लाम का हिंदी और संस्कृत से विरोध नहीं, अपितु उसका आग्रह है कि उसके प्रचार के निमित्त उसका स्वागत किया जाए और अपनी रचनाओं के द्वारा उसे घर घर पहुँचा दिया जाए। 1. कवि हुसैन अली कृत भोपावती की भाषा तत्कालीन बोलचाल की अवधि भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं से मंडित है। उस पर ब्रज भाषा का प्रभाव लक्षित होता है। भाषा सरल, साधारण एवं सुमधुर है। कवि ने कथा को सीधी सादी भाषा के माध्यम से वर्णित किया है। सर्वत्र ही प्रसाद गुण की अधिकता है। भाषा में वैसा सामर्थ्य नहीं जैसा जायसी एवं उस्मान की कृतियों में दृष्टिगोचर होता है। अतएव उनका विरह वर्णन इतना मार्मिक नहीं बन सका जिससे जी पानी हो सके। 1. डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य इलाहाबाद, सन 1962 ईस्वी, पृष्ठ 371। 2. अनुराग बांसुरी प्रयाग, 2007 विक्रम, बीती बात, पृष्ठ 48, पृष्ठ संख्या 560। शेख निसार का जन्म अवध के अंतर्गत शेखपुर नामक कस्बा में हुआ था। 1. इस आशु कवि ने 7 दिनों 2 में वहाँ की साधारण बोलचाल की अवधि में अपने युवा पुत्र के निधन, तीन से पागल सा होकर आठ आठ आंसू रोते हुए यूसुफ जुलेखा को लिखा। चार, उपसंहार की भाषा अत्यधिक मर्मस्पर्शी है, उसे पढ़कर कलेजा मुंह को आता है और बरबस आंसुओं का तार बंध जाता है। कवि ने यूसुफ जुलेखा में विशेषकर ऋतु वर्णन और बारह मासा के वर्णन के समय सोरठे, कवित्त और सवैये लिखे हैं, जिन पर ब्रज भाषा की छाप प्रचुर परिमाण में मिलती है। एक उदाहरण देखिए। कवित्त, मास माधो स्नेह सोहावन, जगत सुख छायो समय, विटप फूलत फलत तरुवर, अम्ब सो बौरन भय, बहुन शीतल छाह सुंदर, सुख संयोगिन कह रहे, कौन हरियर करे पियुबिन, वेल बिरही से डहे। पाँच, एक, शेख पुरा उत गांव सुहावा, शेख निसार जन्म तह पावा। यूसुफ जुलेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग, आदि खंड, छंद दस। दो, सात दिवस मह कथा सुहाई, कीन समापत दीन बनाई। यूसुफ जुलेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग, उपसंहार, छंद सात। तीन, बाईस बरस के बयस मह छाड़ दीन उन देह, मूरत अनूप गुलाब से जाय मिले पुन खेह। यूसुफ जुलेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग, उपसंहार, छंद एक। चार, रोय रोय यह विरह बखानी, को न रहा जग रह कहानी। यूसुफ जुलेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग, उपसंहार, छंद सात। पाँच, यूसुफ जुलेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग, यूसुफ जुलेखा, मिलन खंड, पृष्ठ संख्या 561। सोरठा, हरे हरे ऋतुराज, बनी आवे लोहित भय, आवे कौने काज, कंत न पूछे बात मोही। एक, मुहावरे कोई प्रयोग से भाषा और भी सरल एवं सजीव हो गई है। निस्संदेह यूसुफ जुलेखा माधुर्य और प्रसाद गुणों का संगम है। नजफ अली सलोनी कृत प्रेम चिंगारी और ख्वाजा अहमद विरचित नूर जहां की भाषा बोल चाल की अवधि है। दोनों काव्यों की भाषा स्पष्ट, सहज और बोधगम्य है। नजफ अली की भाषा भावानुकूल है और शब्द योजना बड़ी सुंदर है। ख्वाजा अहमद का भी साधारण बोलचाल की भाषा पर अच्छा आधिपत्य है, जिसे मौलाना रूम की दो हकायतों का उल्था करने में कवि पूर्ण रूपेण सफलीभूत हुआ है। रूपांतर मात्र होते हुए भी ऐसा लगता है मानो प्रेम चिंगारी मौलिक कृति हो। शेख रहीम रचित भाषा प्रेम रस की भाषा दैनिक जीवन में व्यवहृत होने वाली अवधि है। इसमें भाषा का सारल्य और लोकाकर्षक रूप दृष्टिगोचर होता है। भाषा का लालित्य तथा माधुर्य हृदयग्राही है। इस रचना के अधिक आकर्षक स्थलों में प्रेमा एवं चंद्रकला का मिलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ भाषा बहुत रोचक हो गई है। इनकी भाषा में स्थानीय शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। स्थानीय प्रयोगों में करारी, पागी, खंगिमा आदि शब्द हैं। जनजीवन में प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों के स्वाभाविक प्रयोग से भाषा में चुस्ती और चारुता आ गई है और साथ ही सजीवता और समर्थता के अपेक्षित गुणों का भी समावेश हो गया है। निस्संदेह उनके कारण भाषा की प्रवाहिता और अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि हुई है। कवि नसीर कृत प्रेम दर्पण की भाषा बोलचाल की सीधी और सरल अवधि है, जिस पर भोजपुरी का प्रभाव लक्षित होता है। दो, एक, यूसुफ जुलेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग, षड ऋतु खंड, सोरठा एक। दो, डॉक्टर शिव सहाय पाठक, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य कानपुर, सन 1964 ईस्वी, पृष्ठ 369, पृष्ठ संख्या 562। कवि की भाषा बोलचाल की ठेठ अवधि होते हुए भी उच्च से उच्च भावों की व्यंजना करने में समर्थ है। भाषा भावानुकूल है, माधुर्य और प्रसाद गुणों की अधिकता है। मुहावरों और लोकोक्तियों का सहज प्रयोग उनकी भाषा की विशेषता है। कुछ पंक्तियाँ देखिए, जिनसे एक तो यह व्यंजित होता है कि कवि को समस्त जीवन दुख उठाने और जहर के घूंट पीने पड़े, दूसरा यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने मुहावरों आदि का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया है, और तीसरा यह भी ज्ञात होता है कि कवि की भाषा में सुबोधता, सरलता, समर्थता, प्रवाहमयता तथा मार्मिकता का नमकीनी है। कियो बियाह पुनि दूसरे बारी, आनो भवन में सुंदर नारी, दोई मास पाछे वह नारी, जा माटी में सेज समारी, तीजे बार कुटुंब मताले, सुंदरी एक घर ब्याह के लाए, दोई बारस रही घर मोरे आई, मोह माया अधिक बढ़ाई। अंत बहु मृत्यु रस चाखा, गई परान तोर अभिलाखा। जस दुखी हूँ मैं जग माही, तसने केहू संसारा। एक कवि ने माटी में सेत संवारना, मृत्यु रस चखना, मुहावरे जानबूझकर भाषा में लाने का प्रयत्न नहीं किया है। वे स्वाभाविक रूप से आए हैं और सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं। लगता है कि मृत्यु रस चखना फारसी के शरबते मर्ग चशीदन का अनुवाद मात्र है। शरबत का अर्थ है शर्करोदक रस, मर्ग का अर्थ है मृत्यु मरण, चशीदन का अर्थ है पीना चखना। स्पष्ट है कि कवि ने इस फारसी मुहावरे को बड़ी चतुराई से अपना लिया है। कहीं कहीं पर कवि ने फारसी के शब्दों को हिंदी रूप देने का प्रयास भी किया है, जैसे दिलकुशा दो के लिए मन विकसा। एक जैसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य लखनऊ, संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 565, टिप्पणी एक। दो आनंददाता हर्षवर्धक, पृष्ठ संख्या 563। कवि अली मुराद कृत कथा कुवरावत की भाषा भी ठेठ अवधि है, उसकी बोध गम्यता श्लाघनीय है। डॉक्टर सरला शुक्ल का कथन है कि इस ग्रंथ कथा कुवरावत की भाषा भी बोलचाल की अवधि है, किंतु साथ ही रहली गैलें आदि पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। संस्कृत या फारसी के तत्सम शब्दों का अभाव है, कहीं भी कवि पांडित्य नहीं दर्शाता। एक निष्कर्ष, फारसी और हिंदी के सूफी कवियों की भाषाओं के अध्ययन के अनंतर यह स्पष्ट है कि फारसी कवियों की भाषा परिनिष्ठित, परिमार्जित, परिष्कृत, प्रवाहमयी एवं प्रांजल है। वह सजीव, ललित, कोमल, बोधगम्य एवं विषयानुरूप है। हिंदी सूफी कवियों की भाषा सरल, सरस, सुंदर, सुबोध, सजीव, स्वच्छ, स्वाभाविक, स्थिर एवं समर्थ है। वह भावानुकूल, गतिशील तथा लोकाकर्षक है। वह लोक भाषा है जिसके रूप को कवियों ने प्रत्येक अवसर पर सुरक्षित रखा है। दोनों भाषाओं में मधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। दोनों भाषाओं के सूफी कवि लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग में सिद्ध हस्त हैं। ये सर्वत्र भाषा भावधारा से प्रकृत्या जल तरंगवत संप्रक्त हैं। इनके प्रयोग के कारण भाषा की प्रांजलता, प्रवाहिता तथा अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि हुई है। दोनों की भाषाओं में दरिया की रवानी और शीशे की सफाई है। दोनों की भाषाएं गायकों के गले का हार हैं।